सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं निट्ठवियट्ठकम्मं केवलनाणेन दिट्ठपरमट्ठं नमियूणरिट्ठनेमिं वोच्छामि निबन्धनुयोगम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 15वीं पुस्तक जो शेष 18 अनुयोग द्वार है उसकी अभी यहाँ चर्चा चल रही है, उसमें से 7वें नंबर का जो निबंधन अनुयोग द्वार उसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। हम पृष्ठ संख्या 13 पर आ गए हैं। निबंधन यानी जीव जिसमें निबद्ध होता है या कर्म निबद्ध होते, जो द्रव्य में जिसमें संबद्ध है उसे निबंधन कहा था। उसकी बात करते हुए अभी हम 13 नंबर के पुस्तक पृष्ठ पर आ गए हैं। प्रत्येक कर्म की बात देखी थी, वो किससे निबद्ध है उसकी बात देखी थी। जैसे ज्ञानावरण है तो या तो सर्व द्रव्यों के सर्व पर्यायों से निबद्ध है केवल ज्ञानावरण की अपेक्षा, या कुछ पर्यायों के या उसको असर्व पर्याय के पर्याय से निबद्ध था ऐसा कहा था, अन्य ज्ञानावरण की बात थी। ऐसे हरेक कर्म की हमने बात देखी थी। हम नाम कर्म की बात देख रहे थे, वो तीन प्रकार से संबद्ध है, निबद्ध जिसको कहते हैं। जीव द्रव्य में निबद्ध है, पुद्गल में निबद्ध है और क्षेत्र में निबद्ध है, क्योंकि नाम कर्म जो है वो जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी होता है नाम कर्म। तो ये जो तीन प्रकार का निबंधन है उसके लिए गाथा सूत्र भी हम पढ़ेंगे 13वें पृष्ठ पर। एक और दो का एक साथ अर्थ है, उसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पंचय छत्तीय छप्पंच दोन्नी पंचय हवन्ति अठेव शरीरादि पश्यन्ता पयडियो आणुपूविये अगुरुलहु परुवघादा आदा उज्जोवणि मिनणामं च पत्ते यथिरसुहेदरण नामानि अपोगल विभागा। शरीर से लेकर स्पर्श पर्यंत, अभी शरीर से लेकर स्पर्श पर्यंत का इसलिए वो नाम कर्म की जो प्रकृतियां उसके बराबर ऑर्डर से याद होना चाहिए। तो कहते हैं शरीर संस्थान अंगोपांग, शरीर के बाद कॉमा लगाना, नाम कर्म के याद है ना कैसे हम कहते हैं गति जाति शरीर बंधन संघात, वो बंधन संघात को इसी में इंक्लूड किया। फिर शरीर संस्थान, ये शरीर संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण गंध रस और स्पर्श, ये अनुक्रम से पांच, वो कितनी कितनी प्रकृतियां वो बता रहे हैं। शरीर की पांच प्रकृतियां हैं, पांच शरीर की बात यहाँ नहीं है, शरीर नाम कर्म की बात है। तो ये जहाँ ये औदारिक शरीर नाम कर्म है, ये कौन सी वर्गणा से बना है? औदारिक वर्गणा से। आप क्या कहते हैं? आहार वर्गणा से, आहार वर्गणा। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई? औदारिक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गणा से बना? कर्मण वर्गणा से। इसीलिए ये पांच शरीरों की बात नहीं है, नाम वही है, नाम कर्म की बात है। ये कारवाण शरीर से बने, ये सारे ही नाम कर्म जो है कारवाण वर्गना से बने, कोई भी आठों कर्म कारवाण वर्गना से बने हैं। ये पांच शरीर, पांच छ संस्थान छ है, याद है बोलो, वो सहनन है। हाँ, समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और वो फिर सहनन है, कुंडक संस्थान, वो संप्राप्त वाला है, वो सहनन है। फिर अंगोपांग, वो कितने हैं? तीन, नीचे लिखा ना, तीन, कौन कौन से तीन? हाँ, औदारिक अंगोपांग, वैकिरिक अंगोपांग और आहार अंगोपांग। तेजस और कारमान के अंगोपांग नहीं होता। फिर सहनन, ये भी छह है, कौन से? वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन, वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्त असुरपाटी का सहनन। ये हम क्रम से देख रहे हैं ना, अनुक्रम से, पांच वर्ण पांच है, गंध दो है, रस पांच है। ये पांच रस की पर्याय वो तो अलग, रस नाम कर्म भी पांच प्रकार का है, ये बात यहां बता रहे। और स्पर्श नाम कर्म जो है उसके आठ प्रकृतियां हैं। हम सामान्य से कहते तो वर्ण गंध रस स्पर्श है तो चार कहलाती है, और उसके विस्तार में अगर जाएंगे पांच दो सात पांच बारह आठ बीस हो जाते हैं ये प्रकृतियां। उसके पश्चात अगुरु लघु, परघात, उपघात, आतप, उद्योत, निर्माण, प्रत्येक व साधारण, स्थिर व अस्थिर तथा शुभ अशुभ, ये नाम प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। ये पुद्गल विपाकी की लिस्ट बता दी। देखो शरीर की जो बात है, संस्थान है, अंगोपांग, ये सभी शरीर का जो कुछ है, वर्ण आदि, उसका सहनन, उसका सहन संस्थान, उसमें निमित्त भूत है, इसलिए इसको पुद्गल विपाकी कहे। देखो इसमें भी अगुरु लघु है, परघात और उपघात लिया, उच्छ्वास यहां नहीं लिया है, उसको छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, पांच शरीर, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह सहनन, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ और निर्माण, ये नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गल निबद्ध है, क्योंकि इनके विपाक से शरीरादिकों की उत्पत्ति देखी जाती है, जिसमें वो करुनिमित्तपना बनता है उससे वो निबद्ध है, ऐसा कहने में आता है। इस प्रकार, हाँ एक ही है, पुद्गल निबद्ध, पुद्गल विपाकी, यहाँ निबंधन की अपेक्षा बात चल रही इसलिए वो पुद्गल निबद्ध ऐसा कहेंगे। इस प्रकार ये 52 नाम प्रकृतियां पुद्गल निबद्ध है, वो नी डबल हुआ, अब जीव निबद्ध नाम प्रकृतियों की प्ररूपणा करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, ये तीन नंबर का, गदि जादि उस्सासो दोन्नि विहाया तसादितीय जुगलम सुभगादि चतुजुगलम जीव विवागाय तीर्थयरम। गति, जाति, उच्छ्वास, दो विहायो गतिया, त्रस आदि तीन युगल। ये त्रस आदि तीन युगल कौन से है? त्रस स्थावर, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त। प्रत्येक और साधारण हमने ऊपर देखे थे, शरीर नाम, शरीर संबंधी, अभी ऊपर लिस्ट में देखे ना, प्रत्येक और साधारण को ऊपर देखा था, त्रस, बादर, पर्याप्त और उसके आगे, यानी उसकी जो जोड़ी वाली है। सुभग आदि चार युगल, ये जो हम देखते हैं ना, छह युगल में से स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ ले लिए ऊपर पुद्गल विपाकी में। अब ये सुभग दुर्भग आदे अनादेय यशस कीर्ति अयशस कीर्ति हाँ सुस्वर दुस्वर नहीं चार ही होगी ना, सुभग सुस्वर आदेय और यश कीर्ति और उसके आगे ये प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। देखो नीचे लिखा है चार गति पांच जाति उच्छ्वास प्रशस्त व अप्रशस्त विहाय गति त्रस थावर बादर सूक्ष्म। ये थावर लिखा है तो स्थावर करो क्योंकि हिंदी में तो स्थावर कहेंगे, प्राकृत में थावर कहते हैं, हम तो हिंदी संस्कृत में स्थावर कहेंगे उसको। त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त। फिर सुभग आदि कहा ना था, सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर। हमें तो ऐसा लगता है ना कि स्वर तो पुद्गल विपाकी होगा, जीव विपाकी में लिया उसको। आदेय अनादेय यश कीर्ति अयश कीर्ति और तीर्थंकर ये प्रकृतियां आत्मा में निबद्ध है क्योंकि इनका विपाक जीव में ही पाया जाता है। इस प्रकार ये 27 नाम प्रकृतियां जीव विपाकी है। अब क्षेत्र निबद्ध प्रकृतियों की प्ररूपणा करने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं। वो सुस्वर दुस्वर के निमित्त से उसके उदय में वो भाषा पर्याप्ति भी होती है और वचन योग आदि होते हैं, इसलिए उसको जीव निबद्ध कहा।
चत्तारियाणुपूवी खेत विभागा तिजिणवरुद्दिष्ठा नीचुच्चा गोदानम हो दिन बंधो दुअपाणे।
चार आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है ऐसा जिनेन्द्र देव के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। नीच व ऊंच गोत्रों का निबंध आत्मा में है। चार आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र निबद्ध है क्योंकि प्रतिनियत क्षेत्र में ही उनका फल पाया जाता है, परंतु नीच व ऊंच गोत्र का निबंध आत्मा में ही है क्योंकि उनका फल जीव में ही पाया जाता है। क्या कहते
हैं
हाँ, ये पहले हमने कितने देखी, 52 देखी, ये जीव विपाकी कितनी हुई, 27 हुई। हाँ 52 और 27 और 4। कौन सी भूल गए, देखो हम गिनते हैं नाम का। देखो आपका क्या कहना है, 52 है, 52 वो बराबर है ना। हाँ हाँ बंधन और संघात के 10 हो जाएगी, 5 बंधन 5 संघात, हाँ तो बराबर हो जाती है ना। 93 होती है, हाँ इसीलिए 83 हो गई। हाँ शरीर में ही बंधन और संघात लेते हैं, पर यह वर्ण गंध को अलग अलग करके 52 हो गई ना। बराबर है, वो 26 वैसे हम कम करते हैं हमेशा, 148 में से 26 कम करके 26 में बंधन पूरे 148 का हिसाब लगाते हैं। हाँ तो 122 कर देते हैं, तो उसमें भी 26 कम कर दी। यही बंधन संघात और ये स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 के बदले 4 लिए इसलिए 16। तो यहाँ भी वैसे ही हिसाब लगाना, यहाँ तो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 के 20 ली और बंधन और संघात को अलग से नहीं बताया, परंतु वो भी शरीर संबंधी है तो उसको उसी में गर्भित कर सकते हैं। ये अभी अंतराय बाकी रहेगी, उसकी बात करेंगे।
दानंतराय दाने लाभे भोगे तहे वव भोगे गहणे होंति निबद्धा वीर्यम च केवलावरणम।
दानांतराय दान के ग्रहण में, लाभांतराय लाभ के ग्रहण में, भोगांतराय भोग के ग्रहण में तथा उपभोगांतराय उपभोग के ग्रहण में निबद्ध है, यानी उसमें बाधा आती है। वीर्यांतराय केवल ज्ञानावरण के समान अनंत द्रव्यों में निबद्ध है। ये पांचों ही प्रकृतियां जीव निबद्ध ही है क्योंकि वे घातिया कर्म है। घातिया कर्म सभी जीव निबद्ध बताया था, और फिर उसमें अपेक्षाकृत परद्रव्यों से, जो ज्ञानावरण के परद्रव्यों से निबद्ध भी कही थी, मोहनीय को भी परद्रव्य से निबद्ध कहा था, दर्शन मोहनीय को। किंतु उनके द्वारा घाते जाने वाले जीव गुणों का ज्ञापन कराने के लिए, यानी ज्ञान कराने के लिए, बताने के लिए इस गाथा की प्ररूपणा की गई है। दान में विघ्न करने वाला दानांतराय, लाभ में विघ्न करने वाला लाभांतराय, भोग में विघ्न करने वाला भोगांतराय, यानी ये तो जीव के पर्याय में होगा, फिर भी परद्रव्य पर आरोप करके वो उससे निबद्ध, ऐसा भी कहते हैं। और उपभोग में विघ्न करने वाला उपभोगांतराय है। ग्रहण शब्द का अर्थ उपभोग ग्रहण है। इस कारण इसका प्रत्येक के साथ संबंध करना चाहिए। जिस प्रकार केवल ज्ञानावरणीय की अनंत द्रव्यों में निबद्धता की प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार वीर्यांतराय की भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि जीव से भिन्न द्रव्य का आश्रय करके वीर्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये जानने में भी वीर्यांतराय लगता है ना, तो उसमें भी वीर्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इस अनियोग द्वार में इतनी ही प्ररूपणा की गई है, क्योंकि शेष अनंत पदार्थ विषयक निबंधन के उपदेश का अभाव है। अन्य पदार्थ अन्य अन्य से निबंधन होते हैं, उसकी कुछ बात नहीं है यहाँ। कर्मों की अपेक्षा और अन्य ये बातें बताई निबंधन की। इस प्रकार निबंधन अनियोग द्वार समाप्त हुआ। ये 18 अनियोग यहाँ बताने वाले हैं, उसमें से 7 नंबर का निबंध अनियोग द्वार समाप्त होता। अभी 8 नंबर का पक्कमाणुयोग द्वारम, इसका अर्थ होता है प्रक्रम, प्रक्रम अनियोग द्वार। ये प्रक्रम यानी वो कर्म के जो प्रचय होते हैं, परमाणु इकट्ठे होते हैं, उसकी अपेक्षा से प्रक्रम बताने वाले हैं। इसमें न्याय की भाषा बहुत सारी है। अभी इसका भी यहाँ मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि एक एक अनुयोग द्वार हो रहा है यहाँ पर। 18 नाम पहले दिए थे, देखो हाँ, ये हम निकालना। प्रस्तावना विषय परिचय है हाँ, उसमें तो उन्होंने 24 नाम बताए हैं। 24 में से तो कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन, इतना तो अपने पूर्व में ही हुआ था, एक एक अनुयोग द्वारा दिखाता है बहुत विस्तार से। अब ये निबंधन देखा, उसके बाद 8 नंबर का प्रक्रम है। देखो जरा 4 नंबर का पृष्ठ निकालना, विषय परिचय का। एक्चुअली यहाँ विषय परिचय में जो लिखा ना, वो मूल में भी है, केवल उसकी 4 लाइन हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ निक्षेप योजना करते हुए प्रक्रम के ये 6 भेद निर्दिष्ट किए गए, यानी जो 6 निक्षेप लगाते हैं वैसे इसमें भी लगाएंगे। नाम प्रक्रम, स्थापना प्रक्रम, द्रव्य प्रक्रम, क्षेत्र प्रक्रम, काल प्रक्रम और भाव प्रक्रम। इनके कुछ और उत्तर भेदों का उल्लेख करते हुए यहाँ कर्म प्रक्रम को अधिकार प्राप्त बतलाया है। यहाँ जो बात चलेगी वो कर्म प्रक्रम की चलेगी, हमें तो उसका अर्थ देखना है केवल। तथा प्रक्रामति इति प्रक्रमः, इस निरुक्ति के अनुसार प्रक्रम से कार्मण पुद्गल प्रचय का अभिप्राय बतलाया है। प्रचय होना यानी उसका इकट्ठा होना, कार्मण के पुद्गल परमाणुओं का प्रचय संचय, अभी उसके हम बात मूल पुस्तक 15 नंबर में देखेंगे। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। जय उभुवने कतिलहो तिहुवन कलिकलु सधुवन मावारो संति यरो संति जिनो पक्कम अनुयोग कतारो। देखो जय उ एने जय तु भुवने कतिलहो लोक भुवन एने तीन भुवन लोक पूरा लोक के एकमात्र तिलक स्वरूप तिहुवन कलिकलुस धुवन वावारो तीन लोक के शत्रुभूत पाप मैल के धोने में व्यापृत कलिकलुस धुवन वावारो। और कैसे संतियरो शांति के करने वाले संति जिनो यानी शांतिनाथ जिनेन्द्र कैसे वे पक्कम अनुयोग कत्तारो और प्रक्रम अनुयोग के कर्ता ऐसे शांतिनाथ जिनेन्द्र जयवंत होवे। शांतिनाथ भगवान को याद करके यहाँ उनको नमस्कार करके इस अधिकार की यहाँ शुरुआत करते हैं। प्रक्रम इस अनुयोग द्वार के स्तोक अर्थों की प्ररूपणा करते समय अप्रकृत अर्थ के निराकरण द्वारा अप्रकृत अर्थ है नहीं उसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं। अप्रकृत यानी जो हमें यहाँ इष्ट नहीं है इष्ट नहीं है जिसकी हम बात नहीं करेंगे प्रकृत अर्थ की प्ररूपणा करेंगे अप्रकृत का निराकरण करेंगे। तो कहते अप्रकृत अर्थ के निराकरण द्वारा प्रकृत अर्थ की प्ररूपणा करने के लिए निक्षेप किया जाता है। हम विशिष्ट बात करना चाहते हैं तो उसको निक्षेप द्वारा समझाते हैं और वो 6 निक्षेपों में भी हम किस निक्षेप में किसकी बात कर रहे हैं उसकी भी बात बताएंगे। वह इस प्रकार है नाम प्रक्रम स्थापना प्रक्रम द्रव्य प्रक्रम क्षेत्र प्रक्रम काल प्रक्रम और भाव प्रक्रम। इस प्रकार प्रक्रम 6 प्रकार का है। इनमें नाम प्रक्रम और स्थापना प्रक्रम अवगत है यानी हमें पता है मालूम है ज्ञात है। द्रव्य प्रक्रम आगम द्रव्य प्रक्रम और नो आगम द्रव्य प्रक्रम के भेद से 2 प्रकार का है। ये जो हमने बहुत बार निक्षेप देखे हैं उसकी ही यहाँ बात चल रही है। तो कहते अभी आगम द्रव्य प्रक्रम किसको कहना उनमें प्रक्रम अनुयोग द्वार का ज्ञायक उपयोग रहित जीव यानी उसका उपयोग उसमें नहीं है। उपयोग रहित का अर्थ है कि उपयोग बिना का तो जीव होता ही नहीं है। उस प्रक्रम नाम के अधिकार में उसका भी अनुयोग में उसका उपयोग नहीं चल रहा है तो उसको उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य प्रक्रम है। जीव को ही आगम द्रव्य प्रक्रम कहा। प्रक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है ना तो इसका जिसको ज्ञान है परंतु अभी वो अन्य तरह उसका उपयोग है उस जीव को आगम द्रव्य प्रक्रम कहेंगे। नो आगम द्रव्य प्रक्रम ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। इनमें से ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य प्रक्रम अवगत है ये बहुत बार लिखा है ना इसलिए इन्होंने यहाँ विस्तार में नहीं है। ज्ञायक शरीर किसको कहना ज्ञायक शरीर द्रव्य प्रक्रम किसको कहना देखो क्या किसके भेद है नो आगम द्रव्य प्रक्रम तो इसका पूरा नाम होगा ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य प्रक्रम। हाँ तो किसको कहेंगे हम अभी यहाँ आगम के ज्ञाता की बात नहीं है यानी जीव की बात नहीं है तो किसकी है शरीर की ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले का शरीर उसमें भी 3 हो सकते हैं। भूतकाल का जो त्याग कर आए वो शरीर हो सकता है वर्तमान का हो सकता है और भविष्य का शरीर उसी जीव का भविष्य का शरीर ये ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य प्रक्रम। भावी नो आगम द्रव्य प्रक्रम में किसको लेना उस जीव को जो भविष्य में जानने वाला है अभी नहीं जान रहा है इसलिए उसको नो आगम में डाला। और इनके अलावा उसको तद व्यतिरिक्त कहते हैं। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य प्रक्रम इसमें 2 भेद हैं कर्म प्रक्रम और नो कर्म प्रक्रम के भेद से 2 प्रकार का है। उनमें कर्म प्रक्रम आठ प्रकार का है, ये यहाँ अपना विषय यहाँ चलेगा। कर्म प्रक्रम यानी उसका पुद्गल प्रचय जो है उसकी बात, यहाँ कर्मों के पुद्गल प्रचय की यहाँ बात करेंगे। उसको यहाँ उसका पूरा नाम क्या होगा कर्म प्रक्रम में, वो कर्म वाला जो है नौ आगम द्रव्य प्रक्रम होगा उसका नाम। नौ आगम द्रव्य प्रक्रम के दो भेद, कर्म प्रक्रम और नौ कर्म प्रक्रम, तद्व्यतिरिक्त वाले, तद्व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य प्रक्रम कहेंगे इसको। तो कर्म प्रक्रम आठ प्रकार का है। नौ कर्म प्रक्रम सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। अश्वों और हाथियों का प्रक्रम सचित्त प्रक्रम यानी उसका समुदाय, हिरण्य और सुवर्ण आदिकों का प्रक्रम अचित्त प्रक्रम तथा आभरण सहित हाथियों और अश्वों का प्रक्रम मिश्र प्रक्रम कहलाता है। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर हाथी लिए, यहाँ तो मनुष्य भी ले सकते हैं ना। अब क्षेत्र प्रक्रम, ये सारा द्रव्य की बात चली, नाम देखा स्थापना देखी द्रव्य हुआ, अभी क्षेत्र प्रक्रम की बात करेंगे। क्षेत्र प्रकरण में ऊर्ध्वलोक प्रक्रम अधोलोक प्रक्रम और तिर्यक लोक प्रक्रम के भेद से तीन प्रकार का है। यहाँ आधेय में आधार का उपचार करने से, ये जो ऊर्ध्वलोक अधोलोक तिर्यक लोक आदि जो है वो आधार है, उसके आधार से जो रहेंगे उसको आधेय कहेंगे। तो कहते आधेय में आधार का उपचार करने से उन लोकों में स्थित जीवों की ऊर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यक लोक संज्ञा है, उसी को लोक कह देंगे। वहां रहने वाले जीवों को ही ऊर्ध्वलोक मध्य अधोलोक तिर्यक लोक कहेंगे, क्योंकि इसके बिना स्थिरशील तीन लोकों का प्रक्रम बन नहीं सकता। क्या कहते हैं, तीन लोग तो स्थिर हैं अपने अपने में, उनका प्रक्रम यानी उनका समूह कैसे बनेगा, तो उनमें रहने वाले जीवों की अपेक्षा। अब काल प्रक्रम कहेंगे, समय आवली क्षण लव और मुहूर्त आदि को काल प्रक्रम कहा जाता है। भाव प्रक्रम दो प्रकार का है, जैसे द्रव्य प्रक्रम में दो भाग के, वैसे भाव प्रक्रम में भी आगम भाव प्रक्रम और नो आगम भाव प्रक्रम। आगम भाव प्रक्रम किसको कहेंगे हम, याद है? हाँ, उसमें उपयोग वाला प्रक्रम, अनुयोग द्वार को जानने वाला जीव उपयोग सहित, उसी में उसका उपयोग है। देखो उसमें उनमें प्रक्रम अनुयोग द्वार का ज्ञायक उपयोग युक्त जीव आगम भाव प्रक्रम है। अभी नौ आगम भाव प्रक्रम किसको कहना, औदयिक आदि पांच भावों को नौ आगम भाव प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ कर्म प्रक्रम प्रकृत है, अपना विषय क्या चलेगा यहाँ कर्म प्रक्रम। प्रक्रामति इति प्रक्रमा, इस निरुक्ति अनुसार कार्मण पुद्गल प्रचय को प्रक्रम कहा गया है। पुद्गलों कार्मण के पुद्गलों का जो संचय है इकट्ठा होना है उसको प्रक्रम कहा। शंका, यहाँ शंकाकार कहता है जिस प्रकार कुमार मिट्टी के एक पिंड से अनेक घटादिकों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष नपुसक स्थावर त्रस अथवा जो कोई भी जीव एक प्रकार के कर्म को बांधकर उसे आठ भेद रूप करता है, क्योंकि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति का विरोध है। क्या कहना चाहते हैं, ये जो अलग अलग जो प्रकृतियां हैं वो कर्म से ही उत्पन्न होती है, ऐसा उसका कहना है शंकाकार का, क्योंकि कर्म से ही उसकी उत्तर प्रकृतियां उत्पन्न होगी, ऐसा उसका कहना है। अकर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होगा, ये उसकी शंका है। और उसका समाधान अभी करेंगे। इस शंका का निग्रह करते हैं। यानी कर्म में से कर्म की प्रकृतियां होगी, अकर्म में से कहाँ होगी, यहीं पर उसकी भूल है, अभी उसको बताएंगे। ये शंकाकार की भूल चल रही है, उसका कहना अकर्म जो है उसमें से कर्म कैसे होगा, इसलिए जो प्रकृतियां है ना यहाँ सारी बताइए, स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर रस वगैरह जो प्रकृतियां है वो कर्म में से, पहले कर्म बना और फिर उसमें से वो बनी, पर वो भूल जाता है कि कर्म भी बना, वो अकर्म में से बना कि नहीं बना। तो प्रकृतियां डायरेक्ट बनने में क्या हर्जा है, उसका समाधान करेंगे अभी। यदि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर तुम्हारे द्वारा संकल्पित एक कर्म की उत्पत्ति भी अकर्म से नहीं हो सकती। बात आई ना, क्योंकि उसने कल्पना की है, उसने क्या कल्पना की, एक कर्म बना और फिर उसके इतने डिविजन्स हो गए। हाँ, मगर ये नहीं मान रहा है ना, ये उसका क्या कहना है, पहले कर्म बन गया तो कर्म बना उसके लिए भी कुछ तो चाहिए ना, अकर्म में से कर्म उत्पन्न हुआ था। क्या कहा, यदि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर तुम्हारे द्वारा संकल्पित, ये इसकी शंकाकार की कल्पना है अपने, क्या कहा, हाँ तो एक कर्म की उत्पत्ति भी अकर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मत्व के प्रति कोई विशेषता नहीं है।
कर्म
अकर्म कर्माणु वर्गना कह सकते हैं उसको, जो कर्म रूप नहीं है वो पुद्गल परमाणु, उसको अकर्म कहेंगे। हाँ, जीव ने इसको अभी ग्रहण करके उसको कर्म रूप किया है, उसने कर्माणु वर्गना को ग्रहण करके कर्म रूप बनाया। हम कहते हैं ना वो कर्म है तो फिर बाद में अकर्म रूप हो जाता है ना, क्या होता है फिर उसके जो विघटन होता है, यथा योग्य जो किस वर्गनाएं बन जाएगी उसकी, उसका परिणाम अन्य अन्य हो सकता है। कर्मत्म के प्रति कोई विशेषता नहीं, इसका अर्थ क्या है, एक कर्म कहो या कर्म की प्रकृतियां कहो, वो भी कर्म है और ये भी कर्म है। यदि एक कर्म, ये प्रकृतियां यदि कर्म अकर्म से नहीं हो सकती तो कर्म भी नहीं होना चाहिए। अभी ये न्याय की भाषा चलेगी यहाँ। हाँ, शंकाकार को न्याय से समझा रहे हैं। यदि कहा जाए जैसे हमने औदारिक में देखा, आहार वर्गणा को ग्रहण किया, बराबर औदारिक शरीर बना, अब औदारिक शरीर का हमने छूटे तो फिर कुछ परमाणु औदारिक शरीर रूप से एक समय रहे, कोई दो समय रहे, बाद में उसका जो कुछ यथायोग्य परिणमन होकर वो तो कुछ अन्य वर्गणा में जाकर मिलेंगे, वो फिर दोबारा कर्माणु वर्गणा होती है, आहार वर्गणा होती है, ऐसी तो नहीं कहा कहीं, उसका तो उसके अधीन है, अपने अधीन परिणमन। देखो क्या कहते हैं तीसरी लाइन, यदि कहा जाए कर्माणु वर्गणा से जो उत्पन्न हुआ है वह यदि कर्म नहीं है तो फिर उससे आठ कर्मों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति का विरोध है। शंकाकार ने कहा था अकर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कौन आ रहा है, उनके साथ आओ आओ। देखना उनके साथ था। यहाँ अपना नया अनुयोग द्वार चालू हो गया, निबंधन अनुयोग द्वार देखा था हमने 15 नंबर की पुस्तक में, अभी प्रक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है। प्रक्रम है कर्म पुद्गल का प्रचय संचय, उसमें आठ कर्मों की बात है। तो शंकाकार का शंका उसकी ऐसी थी कि जो अन्य अन्य प्रकृतियां बनती है वो एक कर्म में से बनती है, जीव पहले कर्म बनता है उसका, फिर बाद में उसके प्रकृतियां होती हैं, उसके लिए उसका कारण क्या था कि अकर्म में से ये प्रकृतियां नहीं बन सकती। तो आचार्य समझा रहे हैं यदि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती तो जो तुम एक कर्म बना ऐसा कहते हैं वो भी अकर्म से नहीं बन सकता, उसके लिए भी आगे और दलील दे रहे हैं। क्या कहते हैं? यदि कहा जाए कि कार्मण वर्गणा से जो एक उत्पन्न हुआ है वह कर्म नहीं है, तो फिर उससे आठ कर्मों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा था अकर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता। अकर्मे ने कार्मण वर्गणा को अकर्म कहा और उसमें से जो बना उसको कर्म कहा, तो ये आठ नहीं बन सकते या अन्य अन्य प्रकृतियां नहीं बन सकती ऐसा कहते हैं, तो वो कर्म भी नहीं बन सकता। शंकाकार के दलील को ही उसके ही भाषा में उसको उत्तर दे रहे हैं। दूसरे, कारणानुसारी ही कार्य होना चाहिए, एकांत नियम भी नहीं है। जैसा कारण है वैसा ही कार्य होना, ऐसा एकांत नियम नहीं है। ये तो निमित्त कारणों की बात चल रही है यहाँ पर। क्योंकि मिट्टी के पिंड से, मिट्टी के पिंड को छोड़कर घट, घटी, शराब, अलिंजर और उष्ट्रिका आदि पर्याय विशेषों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग अनिवार्य होगा। क्या कहते हैं? यदि वो क्या कहते हैं, कर्म में से कर्म बनेंगे और कर्म में से नहीं, तो मिट्टी के पिंड में से मिट्टी का पिंड ही बनना चाहिए। परंतु यह देखा जाता है कि मिट्टी के पिंड में से घट बनता है, छोटी घटी का बनते हैं, या दूसरे कुछ शराब यानी वो तो शकोर आदि जो होते हैं, अलग अलग पात्र उसमें से बन सकते हैं, उसके नाम बताए अलग अलग। तो ऐसे के पर्यायों की, विशेष पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होगी यदि वो शंकाकार की शंका सही माने तो। यदि कहो कि सुवर्ण से, सुवर्ण के घट की ही उत्पत्ति देखी जाने से कार्य कारणानुसारी ही होता है, तो ऐसा कहना भी योग्य नहीं है। कि सुवर्ण से सुवर्ण के पात्र होते हैं, तो कहते हैं कठोर सुवर्ण से अग्नि आदि का संयोग होने पर सुवर्ण जल की उत्पत्ति देखी जाती है। सुवर्ण जल यानी वो सोना जो है पिघल जाता है, उसका रस बन जाता है, तो उसको सुवर्ण रस कहा, ये सुवर्ण जल कहा। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार कारण उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कार्य सर्वात्मना कारण रूप ही रहेगा, इसलिए उसकी उत्पत्ति का विरोध है। क्या कहना चाहते? मैंने बोला ना, इसमें तो सारी न्याय की भाषा है पूरे ये अनुयोग में। क्या कहते हैं? कारण को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि कारण स्वयं वो कारण रूप से है, उत्पन्न होता है उसको तो हम कार्य कहते हैं। क्या कहा? उत्पन्न होता है उसको कारण, कार्य कहा। कारण की तो उत्पत्ति नहीं होती, कार्य की होती है, बराबर, तभी तो उसको हमने कार्य कह दिया। तो यहाँ कहते हैं कि वो कार्य भी उत्पन्न नहीं होने का प्रसंग आएगा। क्यों? क्योंकि कार्य सर्वात्मना यानी पूरे पूरा कारण रूप ही रहेगा। मिट्टी के पिंड में से मिट्टी का पिंड ही बना, तो कार्य कहाँ हुआ? सर्वात्मना पूरी तरह से, पूर्ण देश रूप से कारण जैसा ही वो रहा, तो उसको हम कार्य कैसे कहेंगे? ख्याल में है ना क्या कहना चाहते हैं? यानी उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो उसको हम कार्य नाम देते हैं ना। भले मिट्टी, वो मिट्टी का है, परंतु मिट्टी का पिंड में से अभी घट बना, अन्य अन्य चीजें बनी है, सुवर्ण में से जो भी पात्र बनाया, हार बनाया, कुंडल बनाए, परंतु उसका सोनापना कायम रहते हुए उसमें कुछ विशेषताएं भी हुई है। पूर्ण रूप से जैसा है वैसा ही तो नहीं रहा, ये बात बताना चाहते, इसलिए उत्पत्ति का विरोध है। फिर शंका, यदि सर्वथा कारण का अनुसरण करने वाला ही कार्य नहीं होता, तो फिर मूर्त पुद्गल द्रव्य से अमूर्त आकाश की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। ये अभी जो आचार्यों ने समझा आया उसको, तो उसमें से सही बात नहीं निकालता, ये तो तर्क करने के अधीन है ना। तो उसके क्या तर्क चलते? कारण के अनुसार यदि कार्य नहीं होता है, तो मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है उसमें से अमूर्त आकाश की रचना होनी चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार अचेतन पुद्गल द्रव्य से सचेतन जीव द्रव्य की भी उत्पत्ति पाई जानी चाहिए। अचेतन में से सचेतन बन जाओ, ये भी होना चाहिए, जैसा अन्य कोई मानते भी है। वो कोई पहले आए थे ना उस दिन चर्चा करने को, कहते हैं चेतन भी दो प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म चेतन है, ये स्थूल चेतन, ये सारे जीव वगैरह वो तो ऐसे कि अन्य मति की किसी की कल्पना है, और बाकी ये जिसको हम जड़ कहते हैं, चराचर हो जो अजीव, वो सूक्ष्म चेतन है, वो जीव रूप से बन जाते हैं। कैसी कैसी काल्पनिक बातें, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। इसीलिए कार्य कारणानुसारी ही होना चाहिए, ही लगा रहे ना हम शास्त्र का ही वाक्य, कारणानुविधायिनी कार्याणि, परंतु उसमें भी कुछ अपेक्षित बात होती है, उसमें कारण के अनुसार होते हैं, भी मिट्टी का मिट्टी से मिट्टी के पात्र बनेंगे, उसलिए उसको कारण के अनुसार कहा था, परंतु ये ही लगा के वो सर्वथा मानने का प्रयत्न है उसका, उसकी बात यह बताते समाधान। यहाँ उपर्युक्त शंका का परिहार करते, उसका खंडन करते हैं, वो शंकाकार क्या भूल कर रहा है उसको बताएंगे भी। किसी विशेष स्वरूप से कार्य कारणानुसार ही भले ही हो, क्या कहते हैं, विशिष्ट अपेक्षा से, विशेष स्वरूप से ने उसमें से कोई अपेक्षा ऐसी है कि वो कारण के अनुसार होते हैं, फिर भी, परंतु सर्वात्म स्वरूप से वैसा संभव नहीं है। सर्वात्म स्वरूप ने 100% तो हम उसको कार्य ही नहीं कहेंगे ना, कारण है और बस अभी वो कारण जैसा ही कार्य हुआ, 100% वैसा का वैसा, उसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई, कुछ विशेषता नहीं हुई, तो उसको हम कार्य भी नहीं कहेंगे। इसलिए कहते सर्वात्म स्वरूप से वैसा नहीं है, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य लक्षण वाले जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य अपने विशेष गुणों के अविनाभावी समस्त गुणों का परित्याग न करके अन्य पर्याय को प्राप्त होते हुए देखे जाते। क्या कहना चाहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण है, कौन से द्रव्य का है, सभी, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, तो सभी द्रव्य जो है उत्पाद व्यय और ध्रुवता सहित है। तो ध्रुवता में क्या क्या लेना है, पहले वो 6 द्रव्य हम कैसे पहचानते, तो उनके विशेष गुणों के द्वारा, तो वे विशेष गुण ही है कि उनमें कुछ अन्य भी गुण है, अनंत गुण है, तो वो उनके जो विशेष गुण है, अभी हम जीव की बात करेंगे, जीव में विशेष गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख वगैरह है, तो अपने अपने सभी गुणों से अविनाभावी है। अविनाभाव का अर्थ क्या होता है, जहाँ एक है वहाँ अन्य पाए ही जाते हैं, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो अग्नि जो हमें दिखाई देती है वो पुद्गल है कि क्या है, जीव है, जो हमें दिखाई देती है वो क्या है, पुद्गल है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगे कि नहीं होगे, हाँ कौन सा रस होगा उसका, जो कुछ होगा हमने इंद्रियों द्वारा नहीं चखा तो क्या हुआ, उसमें है कि नहीं, वो पुद्गल है तो उसमें है, क्यों है, हम कह सकते वो अविनाभावी है, कोई भी पुद्गल है उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाए ही जाएंगे। तो प्रत्येक द्रव्य अपने विशेष गुणों से युक्त है, और वो विशेष गुण भी अपने अन्य सभी गुणों से अविनाभावी संबंध वाले हैं। इसका अर्थ है वो जो सारे जो उसके गुण हैं वो नित्य उसमें रहने वाले हैं, उसमें कुछ तब्दीली नहीं होगी। फिर भी उत्पाद और व्यय में क्या कुछ विशेषताएं होगी, वहाँ कुछ कार्य होगा, वहाँ अवस्थाएं पलटेगी, गुणों के कायम रहते हुए अवस्थाएं पलटेगी। यही वाक्य फिर पढ़ेंगे, सेकंड लाइन लास्ट में, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य लक्षण वाले ये 6 द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य अपने विशेष गुणों के अविनाभावी समस्त गुण, यानी अपने समस्त गुण, उनका परित्याग न करके, क्योंकि वो परित्याग हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या संबंध है उनमें, कौन सा, हाँ गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और वो गुण कैसे रहते हैं द्रव्य में, उनका कौन सा संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध, तादात्म्य रूप से है वहाँ पर, इसलिए उसका परित्याग हो ही नहीं सकता है। परित्याग न करके फिर भी अन्य पर्याय को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं, हर समय उसकी पर्याय 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 चलती है, परिणाम द्रव्य तो गुण है ना, उसका परिणाम हर समय चलता है, तो ये पर्याय अन्य अन्य होती है, परंतु वो उसमें नित्यता ध्रुवता कुछ कायम रहती है। दूसरी बात, कर्म कार्मण वर्गणा से सर्वथा भिन्न भी नहीं है, क्योंकि उनमें अचेतनत्व, मूर्तत्व और पौद्गलित्व स्वरूप से कार्मण वर्गणा के साथ समानता पाई जाती है। यानी अकर्म से कर्म बना उसका ये जो कहना है, तो उसमें सर्वथा भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति तो नहीं हुई है, कथंचित उसमें जो समानता है वो क्या है, दोनों अचेतन है, मूर्त है, पौद्गलिक स्वरूप से है, तो ये उनमें समानता पाई जाती है। इसी प्रकार वे उससे सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, कोई कहे तो वो तो अभिन्न ही हो गए उससे, तो अभिन्न नहीं कह सकते उनको, यानी एकमेक नहीं कह सकते। कर्म का एक नाम दे दिया फिर भी उसमें जो भिन्नता है वो तो है ही, क्योंकि ज्ञानावरणादि रूप प्रकृति भेद, ज्ञानावरणादि जो आठ कर्म है और उसके भी जो उत्तर भेद है, तो ये तो जो भेद पाए जाते हैं तो ये तो उसमें विशेषता है ही। पूरा सभी कर्म अगर हम नाम भले उन्हें हमने कर्म दिया, परंतु उसकी अपनी अपनी हर एक की विशेषता है। स्थिति भेद भी देखा हमने, हर एक की अपने, एक समय में अनंत परमाणु बनते हैं परंतु एक एक परमाणु की अपनी अपनी अलग अलग स्थिति होती है। जैसे आबादा को छोड़कर जो निषेय की स्थिति रचना होती है, प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ परमाणु वहाँ है, अनंत में से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हर एक की अपनी अपनी स्थिति, तो उसके स्थिति भेद भी बताएंगे उसमें। और अनुभाग भेद से वैसे ही प्रत्येक परमाणु में वो फल देने की जो शक्ति अनुभाग, वो भी अलग अलग होती है। हमने अनुभाग की रचना भी देखी थी, वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानी वगैरह। तथा जीव प्रदेशों के साथ परस्पर अनुगत स्वरूप से उनमें कार्मण वर्गणा से भेद पाया जाता है। क्या कहते हैं, कार्मण वर्गणा और कर्म में क्या क्या भेद है ये बात बता रहे हैं। तो वहां तो प्रकृति भेद हो जाते हैं, स्थिति भेद होते हैं और अनुभाग भेद होते हैं, और ये जो कर्म जो है वो जीव के प्रदेशों में अनुगत है, उसमें संबद्ध है, मिले जुले है। क्योंकि हम देखते हैं जीव मरकर दूसरे भव में चला जाता है, तो उसकी जो सारी प्रकृति है उसके साथ जो एक क्षेत्रावगाही में स्थित है वो उसके साथ चली जाती है। यानी किसी अपेक्षा वहाँ वो बंधी हुए पुराने कर्मों के साथ वो बंधी है, और वो जीव और वो एक साथ रहते हैं, उसको अनुगत कहा है। तो कार्मण वर्गणाएं भी साथ में जाती होगी कि नहीं जाती, वो जीव के प्रदेशों से जुड़ी है कि नहीं है। नहीं हुए तो वो वहीं पड़े रहेंगे, उसका जरूरत नहीं है वो वहाँ उसके साथ जाएंगे। वो विश्रसोपचय रूप से हो गए, कुछ चले जाएंगे नहीं जाएंगे उसकी बात नहीं, पर उसका जीव के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो कार्मण वर्गणा को हम, वो भले उसमें है, उस क्षेत्र में स्थित है, फिर भी वो जीव के प्रदेशों में जुड़े हैं ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, उस आकाश के क्षेत्र में भले रहे ना, क्यों, जैसे हमारे पेट में वर्म्स है, कीड़े हैं, तो हमारा उनका क्या संबंध है। फिर भी विश्रसोपचय में उसको भी गिनाता है ना, साधर्मी है। हाँ। अरे समान धर्म है कि नहीं, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। हाँ। हमारे से पहले चले जाएंगे सिद्धालय में, कुछ गारंटी नहीं है। यानी वहां कथनचित भिन्नता भी है और कथनचित अभिन्नता भी है, इसलिए सर्वथा शब्द के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट ही लगाने के लिए उन्होंने, एकांत हो जाता है, इसलिए कार्य
ही लगाने से एकांत हो जाता
है। एकांत हो ना, उसने कार्य सर्वथा, सर्वथा यानी सर्वात्म, पूरे पूरा कारण के जैसा होता है कहेंगे, तो उसको कार्य ही कौन कहेगा।
इंजीनियर ही है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि घर में किसी के पिता है।
नहीं नहीं, वो तो बात है। यानी कार्य में, कारण में से कार्य की उत्पत्ति हुई अगर हम कहें, या कारण जैसा कार्य हुआ ऐसा मानेंगे, तो कारण जैसा हुआ ये मान्य है, परंतु सर्वथा सर्वात्मा उसको कार्य नहीं, उसमें कुछ विशेषता हुई है, कुछ डिफरेंस भी है, भिन्नता भी है, अभिन्नता के साथ साथ भिन्नता भी वहाँ पर है, अभिन्नता किस अपेक्षा, तो जैसे गुण है वैसे इसमें भी गुण है, उसके पर्याय कुछ अलग अलग पलटती रहती है, इसलिए उसको कथनचित भिन्नता कथनचित अभिन्नता कहा। तो ही लगाएंगे तो सर्वथा सर्वात्म रूप से हो जाएगा, तो उसको कार्य भी नहीं कहेंगे। मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का पिंड रहा तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसे कहेंगे हम। ये समझाने के लिए, मिट्टी का पिंड रूप से भी रहता है तो हम कहेंगे वही वैसी वैसी उसकी पर्याय रहती है, या तो न्याय समझाना है ना, इसलिए उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखो, इसलिए कार्य कथनचित कारणानुसार ही है, ये इसका तात्पर्य। और कथनचित वह तदनुसार ही नहीं भी है, भी लगाए ना, यानी उस समान भी है और नहीं भी है, कथनचित लगाया है। किस अपेक्षा से वैसा है, तो सुवर्ण का है, सुवर्ण का जो सुवर्ण से मिट्टी का पात्र तो नहीं बनेगा, लोहे का नहीं बनेगा, सुवर्ण का बनेगा, तो उसके अनुसार कहा। परंतु पहले कुछ अलग अवस्था थी और अभी कुछ अलग अवस्था बन गई है, तो इसके लिए वो उसके समान नहीं भी ऐसा कहेंगे। शंका, चूंकि असत कार्य किया नहीं जा सकता, उपादानों के साथ कार्य का संबंध रहता है, किसी एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं है, समर्थ कारण के द्वारा शक्य कार्य ही किया जाता है, तथा कार्य कारण स्वरूप ही। अरे उसने तो गाथा ही दी क्या, कैसे राम हाँ, शंका में उसने श्लोक प्रस्तुत किया है, गाथा। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्तकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। फिर हम शंका पढ़ते, उसने गाथा ही प्रस्तुत की है, क्योंकि असत कार्य किया नहीं जा सकता, उपादानों के साथ कार्य का संबंध रहता है, किसी एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं है, समर्थ कारण के द्वारा शक्य कार्य ही किया जाता है। ये समर्थ कारण आदि उपादान में ये लगते हैं ना, समर्थ कारण किसको कहते हैं, वो तो नियामक कारण को समर्थ कारण कहते हैं। देखो, कारण दो प्रकार के होते हैं, कि उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण में भी त्रिकाली उपादान कारण, वो तो द्रव्य को ही कहेंगे, उसके गुण को भी कहेंगे, फिर भी वो समर्थ उपादान कारण नहीं कहलाता। समर्थ किसको कहेंगे, तो फिर उसमें क्षणवर्ती को कहेंगे, क्षणवर्ती उपादान। क्षणवर्ती उपादान भी दो प्रकार का है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप जो है, और वो फिर उस समय की योग्यता रूप जो समर्थ उपादान कारण। तो ये समर्थ उपादान के कारण द्वारा शक्य तस समय की योग्यता, उस समय के पर्याय की योग्यता, समय के ने वो काल में नहीं जाना, उस पर्याय की ही वैसी योग्यता है, और शक्य कार्य ही किया जाता है, जो होने वाला कार्य है वही होगा, और होगा वो समर्थ उपादान से यानी क्षणिक उपादान से, उस समय ही होगा, उसी समय होगा और होने वाला वही होगा, ये समर्थ उपादान है। हाँ, नियामक कहो या समर्थ कहो, एक ही बात। हम तो कोई निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ ऐसा समझते थे ना, तो ऐसा नहीं है, ये तो गाथा उसने शास्त्र की बताई है। तथा कार्य कारण स्वरूप ही है, उससे भिन्न संभव नहीं है, अतएव इन हेतुओं के द्वारा कारण व्यापार से पूर्व भी कार्य सत्य है यह सिद्ध है। यानी कार्य कारण का जो व्यापार हुआ उसके पहले भी कार्य होना चाहिए सत रूप से, क्योंकि असत की तो उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा कहा है, तो उसके लिए उसी का विशेषार्थ बताते। देखो, ये अलग अलग मतों की अपेक्षा क्या क्या होता है और इसकी कहाँ क्या भूल हो रही है उसको भी बताएंगे। सांख्य मत में प्रधान की सिद्धि में उपयोगी होने से सत्कार्यवाद को स्वीकार किया गया है। सत्कार्यवाद ने जब वाद शब्द लगाते हैं तो एकांत सर्वथा एकांत ऐसा समझना, सत्कार्य जो है उसी की उत्पत्ति होती है ऐसा। कार्य को सत सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त कारिका में निम्न हेतु दिए गए हैं। यदि कारण व्यापार के पूर्व में कार्य को सत ही स्वीकार किया जाए तो उसका उत्पन्न होना शक्य नहीं है, जैसे खर विषाण। कारण के पहले ही सत को अगर स्वीकार किया जाता है तो उसकी उत्पत्ति क्या हुई, वो बन ही नहीं सकता। खर विषाण का अर्थ समझते हैं क्या है? सिंह किसके?
आकाश
है। आकाश के नहीं, तसा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सशृंग कहाँ का है? खर विषाण कहा? खर है ना गधा, गधे के सिंह के समान। अतएव कारण व्यापार के पूर्व में भी कार्य को सत ही स्वीकार करना चाहिए। ये तो सांख्य मत में क्या क्या बातें हैं उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। कारण के द्वारा केवल उसकी अभिव्यक्ति की जाती है जो विचित है, यानी कार्य ऑलरेडी है और कारण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रकटता होती है। जैसे तिलों में तेल जब पहले से ही सत है तभी वह कोलों आदि के द्वारा निकाला जा सकता है, वालुका में से तेल का निकाला जाना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है। दूसरा हेतु, ये भी सारे शंकाकार के लिए, ये सारे शंका को ही समझा रहे हैं, समाधान तो आगे जाके आएगा। शंकाकार दूसरा हेतु दे रहे हैं, उपादान ग्रहण दिया गया है। उपादान ग्रहण का अर्थ है कारणों से कार्य का संबंध, अर्थात कारण कार्य से संबद्ध हो करके ही उसका उत्पादक हो सकता है, न कि असंबद्ध रहकर। क्या कहते हैं? कारण है वो कार्य से संबद्ध रहता है, असंबद्ध रहकर उसका उत्पादक नहीं हो सकता है। और वह संबंध चूंकि असत कार्य के साथ संभव नहीं है, अतएव कारण व्यापार में पूर्व में भी कार्य को सत ही स्वीकार करना चाहिए। जो है नहीं उसके साथ क्या व्यापार करेगा वो, इसलिए ये सारे सांख्य मत के हेतु दे रहे वहां पर। यदि कहा जाए कि कारण असंबद्ध ही कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः इसके लिए कार्य को सत मानना आवश्यक नहीं है, सो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर जिस प्रकार मिट्टी के द्वारा अपने से असंबद्ध घट कार्य किया जाता है, उसी प्रकार असंबद्धत्व की समानता होने से घट के समान पट आदि कार्य के भी उसके द्वारा उत्पन्न कार्य भी उसके द्वारा उत्पन्न किए जा सकते। क्या कहना चाहते हैं शंकाकार का? शंका उसकी कहनी है, सांख्य मत के हेतु दे रहा है कि कार्य अगर असंबद्ध से वो जुड़कर कार्य होता है, पहले से नहीं होगा, तो क्या आपत्ति होगी? जैसे मिट्टी में से घट बनता है तो पट भी बन सकेगा। इस प्रकार एक ही किसी कारण से सब कार्यों को उत्पन्न होने का प्रसंग अनिवार्य होगा।
हेतु शब्द का क्या मतलब है?
हेतु यानी उसका साधन, दलील, उसकी प्रूफ। जो कुछ हेतु साधन कहते हैं, वो कोई बात प्रूव करने के लिए उसके जो दलील की जाती है, साधन दिया जाता है, उसका जो प्रूफ दिया जाता है। ओके, न्याय बताना उसके लिए, उसको हेतु कहेंगे। हाँ, वो घट आदि, हाँ, उनका कहना घट पहले से विद्यमान है कार्य कारण में, तभी तो उसके साथ संबंध करता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। सर्वथा नया कुछ नहीं बनाएगा, बनाएगा तो पट भी बन सकता है। इस प्रकार एक ही कारण किसी कारण से सब कार्यों के उत्पन्न होने का प्रसंग अनिवार्य होगा, तो कहते सभी दुनिया में जितने कार्य वो सभी बनेंगे, मिट्टी में से बन जाएंगे। परंतु ऐसा चूंकि संभव नहीं है, अतएव यह स्वीकार करना चाहिए कि संबद्ध कारण संबद्ध कार्य को ही उत्पन्न करता है, न कि असंबद्ध को। इस प्रकार यह तीसरा हेतु देकर सत कार्य सिद्ध किया गया है। सत कार्य ने सत कार्य पहले से ही सत है इसको बता रहे हैं। यहां शंका की जा सकती है कि असंबद्ध रहकर भी वही कार्य उत्पन्न किया जा सकता है जिसके उत्पन्न करने में कारण समर्थ है। क्या कहते हैं? स्वयं ही शंकाकार हेतु दे रहा है कि ऐसा ही कार्य उत्पन्न होगा कि जिसमें वो समर्थ है। ये पट बनने में समर्थ नहीं है तो घट बनने में समर्थ है, तो वही कार्य वहाँ सतरूप से है। इसीलिए सर्वसंभव का प्रसंग देना उचित नहीं है। यानी शंकाकार स्वतः ही और शंका और समाधान दे रहा है। इसके उत्तर में शक्तस्य शक्य करणात् यह चतुर्थ हेतु दिया गया है। उसका अभिप्राय है कि शक्त कारण शक्य कार्य को ही करता है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, कारण में रहने वाली वह कार्योत्पादन रूप शक्ति क्या समस्त कार्य विषयक है या शक्य कार्य विषयक ही है? यदि उक्त शक्ति समस्त कार्य विषयक स्वीकार की जाती है तो सबसे सभी के उत्पन्न होने का जो प्रसंग दिया गया है वह तदवस्थ ही रहेगा। यानी वो अशक्य कार्य उत्पन्न नहीं हो गया ऐसी उसमें शक्ति है, शक्य कार्य उत्पन्न होते हैं ऐसी वो दलील करता है। इसलिए यदि उक्त शक्ति को शक्य कार्य विषयक ही स्वीकार किया जाए तो फिर स्वयमेव सत कार्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अविद्यमान शक्य कार्य में तद विषयक शक्ति की संभावना ही नहीं रहती। अतएव कार्य सत ही है। कार्य सत है ही लगा के बता रहा है, उसके लिए उसके हेतु भी दे रहा है। ये अन्य अन्य दर्शन उत्पन्न होते हैं तो वो अपने अपने हेतु वगैरह सब सिद्धांत बना देते हैं। सुनने वाले को तो ऐसा लगता है, हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ऐसा लगता है ना। सत कार्य को सिद्ध करने के लिए अंतिम हेतु कारण भाव दिया गया है। उसका अभिप्राय यह है, कार्य चूंकि कारणात्मक है अतएव जब कारण सत है तो उससे अभिन्न कार्य कैसे असत हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः कार्य कारण व्यापार के पूर्व भी सत ही रहता है, ये ही लगा है उसने, सत ही वो कार्य रूप से उसको सत मान रहा है। यह सांख्यों का अभिमत है। आगे वीरसेन स्वामी स्वयं इस अभिप्राय का निराश करने वाले हैं। समाधान, इस प्रकार किन्हीं कपिल आदि का कहना है जो योग्य नहीं है। इतना हमने पेज भर के पढ़ा ना, कपिल आदि, कपिल उसमें से,
कपिल तो बुद्ध का शिष्य था ना?
नहीं, कपिल उसका अपना उलुक मत कुछ था ना उसका, हाँ? कपिल,
कपिल आदि रचित,
कपिल वो अलग ही है कुछ,
कपिल आदि रचित,
हाँ, ये कपिल ने बहुत सारी ऐसी रचना की, उसकी अपनी कुछ रचना है, ये कपिल की रचना है। बुद्ध अलग है, ये कपिल अलग है, एकांतवादी है,
बुद्ध एकांतवादी है,
ये भी एकांतवादी
है, हाँ, कपिल आदि रचित,
हाँ, कपिल का मत है ना,
हाँ। सांख्य और कपिल अलग अलग हो गए,
ये सांख्य मत में ये बताया, फिर भी उसमें कोई कपिल ने रचना की होगी उसकी बात है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उनके नाम दिए हैं सारे, कपिल वगैरह सारे,
हाँ।
कपिल से लेकर वो व्यास वगैरह तक सभी के नाम दिए। ये क्यों योग्य नहीं है? कारण कि कार्य को सर्वथा सत मानने पर क्या भूल हो गई उसकी? सर्वथा सत ही मान लिया ना, एकांतवाद हो गया। हम उसमें से जो कार्य कारण जैसा होता है वगैरह हम इजीली समझते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो अनेकांत से हम उसको स्वीकार करते हैं, और ये सर्वथा है ही कार्य ऐसा मान रहा है। फिर कर्ता के व्यापार के निष्फल होने का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं? सर्वथा सत ही है, विद्यमान ही है, तो फिर करने वाला क्या करेगा? अभी कुछ करने की कहाँ गुंजाइश रही, वो तो है ही ना, कार्य है ही, विद्यमान ही है, तो क्या करना रहा? तो कर्ता निष्फल हो गया ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार सर्वथा कार्य के सत होने पर उपादान का ग्रहण भी नहीं बनता। सर्वथा सत कार्य की उत्पत्ति का विरोध है। सर्वथा सत है तो उसकी उत्पत्ति क्या होना, उसके लिए उपादान की क्या जरूरत है। कार्य के सर्वथा सत होने पर कार्य कारण भाव ही घटित नहीं होता, वो है ही ना, तो फिर उसके लिए कारण की क्या जरूरत है। ये सर्वथा सत मानने में क्या क्या दोष है उसको बताया। इसके अतिरिक्त असंगत होने से सत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि यदि कार्य कारण व्यापार के पूर्व में भी विद्यमान है तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। जो है उसकी क्या उत्पत्ति है, जो नहीं था वो बन गया तो हम कहेंगे ना उत्पाद। उत्पत्ति भी पर्याय की होती है, कार्य की होती है। अब वो है ही है तो उसकी उत्पत्ति का कहाँ प्रसंग आता है।
चलो आटे से रोटी बनाई तो बोलेंगे आप रोटी का बने हो, तो थी आटे में रोटी थी तो उसको बोलते हमने इतना मेहनत किया किचन में ना।
नहीं, वो आटे में रोटी रूप से रोटी थी, ऐसा आप समझ रहे हैं।
हाँ, सब में मान रहा है।
हाँ,
तो जिसने बेचारे आटा मान के रोटी बनाई है उसका फिर क्या काम, पुरुषार्थ क्या हुआ।
तो उत्पत्ति कैसे होती है, और यदि वह कारण व्यापार से उत्पन्न होता है तो फिर उसका पूर्व में विद्यमान रहना कैसे संगत कहा जाएगा। ये आटे में रोटी थी ही तो फिर वो आटा निकाला, गूंथा, बंधा, वो क्या किया उसने, उसकी क्या जरूरत थी। और भी बता रहे, नित्य पक्ष में कारण और कार्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। ओहो, वो तो नित्य ही है ना, सर्वथा नित्य ही मान लिया तो सर्वथा नित्य है, पर्याय को स्वीकार ही नहीं करते तो कार्य होने का सवाल ही कहाँ रहा, वो सर्वथा ही है। हाँ, कार्य कारण कार्य नहीं घटित, कार्य कारण भाव नहीं घटित होता, क्योंकि वहाँ उन्होंने सर्वथा सत कार्य माना ना, सर्वथा सत माना था, क्योंकि उस अवस्था में निर्विकल्प होने के कारण यानी उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ ना, जो है वैसा ही है, पहले से ही है वो निर्विकल्प है, उसमें कोई भेद ही नहीं होगी, पर्याय ही नहीं घटित होगी उसमें। उसके कारण प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से रहित अर्थ में कार्य कारण भाव बन नहीं सकता।
ओहो,
ये यहाँ तो इतने ही अभाव में, अभाव को भी यहाँ लिया है पूरा। क्या कहते हैं, प्राग भाव किसको कहना, कार्य पूर्व में नहीं था और ये अभी बना है ना, पूर्व पर्याय में अभाव था उसका, और प्रध्वंसा ने उसका
हाँ
फ्यूचर में तो उसका अभाव है, उसका नाश ही है ना। तो यदि ऐसे रहित अर्थ में, क्योंकि पहले से है माना हमने, वो मौजूद है तो ना प्राग भाव बनेगा ना प्रध्वंसा भाव बनेगा। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से रहित अर्थ में, अर्थ यानी पदार्थ में कार्य कारण भाव बन नहीं सकता। ये कार्य कारण और ये कार्य से भाव ही नहीं घटित होगा, क्योंकि वह सर्वथा सत ही है वो। यदि कहा जाए कि आविर्भाव का नाम उत्पाद, आविर्भाव होना है ना, हम कहते हैं प्रकट होना, आविर्भाव और तिरोभाव, इसे दो शब्द आते हैं।
तिरोभाव
समाचार में आता है ना, तिरोभाव ने ढक गया उसको तिरोभाव कहते हैं। यदि कहा जाए कि आविर्भाव का नाम उत्पाद और तिरोभाव का नाम विनाश है तो यह भी कहना योग्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ही अवस्था में रहने वाले नित्य पदार्थ का अनाधेय अतिशय यानी विशेषता रहित होने से, चूंकि अवस्थांतर में संक्रमण संभव नहीं है, क्या कहते हैं, ये सर्वथा नित्य पदार्थ माना उन्होंने तो उसका अवस्थांतर हो नहीं सकता, अतएव उसमें आविर्भाव एवं तिरोभाव रूप दो अवस्थाओं के रहने का विरोध है। तो सर्वथा नित्य ही माना, वो तो है तो उसमें आविर्भाव तिरोभाव का कोई सवाल ही नहीं है। अर्थात कूटस्थ नित्य होने से यदि वह तिरोभूत है तो तिरोभूत ही सदा रहेगा, उन्होंने कूटस्थ नित्य माना। ये सर्वथा कूटस्थ मानने वाले है ना, और बौद्ध सर्वथा क्षणिक मानने वाले, यहाँ सर्वथा कूटस्थ मानने वालों की बात चल रही है। तो कूटस्थ नित्य होने से यानी उसमें कुछ पर्याय नहीं होती, कार्य नहीं होता, नया कुछ होता ही नहीं, ये सब है ही है। तो उसमें तिरोभूत होगा तो हमेशा तिरोभूत ही रहेगा, रोगी सदा रोगी रहेगा और निर्धन सदा निर्धन रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा वो किसी को नहीं चलेगा। और यदि आविर्भूत है यानी प्रकट है तो सदा आविर्भूत ही रहेगा, कहाँ भी है। नित्यत्वैकांत पक्षेपि विक्रिया नोपपद्यते प्रागेव कारकाभाव क्व प्रमाणं क्व तत्फलम्। नित्य एकांत पक्ष में भी पूर्व अवस्था यानी मृत पिंड, मृत यानी मिट्टी, मिट्टी का पिंड आदि, ये समझाने के लिए दृष्टांत दिया। पूर्व अवस्था के परित्याग पूर्व रूप और उत्तर अवस्था घटादि के ग्रहण रूप विक्रिया घटित नहीं होती। जो नित्य एकांत पक्ष, एकांतवादी की बात चल रही है, जो सर्वथा कूटस्थ नित्य मानता है, तो उसमें पूर्व अवस्था का त्याग हुआ और नई अवस्था धारण की ऐसा हो ही नहीं सकता। मिट्टी का पिंड का त्याग हुआ और वहाँ घट उत्पन्न हुआ, ऐसा वो कह नहीं सकते। अतः कार्योत्पत्ति के पूर्व में ही कर्ता आदि कारकों का अभाव रहेगा, और जब कारक ही न रहेंगे तब भला फिर प्रमाण प्रमृति क्रिया का अतिशय साधक और उसके फल, कौन सा फल, अज्ञान निवृत्ति की संभावना कैसे की जा सकती है, अर्थात उनका भी अभाव रहेगा। विशेषार्थ अभी इसी को समझा रहे हैं। सांख्य मत में चेतन पुरुष को कूटस्थ नित्य स्वीकार किया गया है। इस मत का निराकरण करने के लिए उक्त कारिका का अवतार हुआ है, ये इसको कारिका कहा। देखो ये आचार्यों ने इतने सारे न्याय शास्त्र आदि लिखे हैं, तो अन्य अन्य मतों की जितनी उत्पत्ति हुई है तो उनका कथन कैसे गलत सिद्ध होता है, उसके लिए बहुत सारे न्याय शास्त्र लिखे हैं। तो इसलिए ये उक्त कारिका का अवतार हुआ है ना, ये कारिका लिखी गई है। उसका अभिप्राय यह है कि पुरुष को सर्वथा नित्य माना जाता है तो वह विकार रहित होने से चेतना रूप क्रिया का कर्ता भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस अवस्था में कारक यानी कुंभकार अथवा ज्ञापक यानी प्रमाता हेतुओं का व्यापार असंभव है। कारक यानी करने वाला, ज्ञापक यानी जानने वाला, इसका हेतुओं का व्यापार असंभव है। और यदि कारक व ज्ञापक हेतुओं का व्यापार स्वीकार किया जाता है तो फिर पूर्व स्वभाव यानी अकारक अथवा अप्रमाता का परित्याग करके उत्तर स्वभाव, कौन सा, उत्पत्ति अथवा क्रिया का कर्तृत्व को ग्रहण करने के कारण उसकी कूटस्थता का विघात होता है। क्या कहना चाहते हैं सांख्यमति, क्या मानते हैं, नित्य है, कूटस्थ है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो जो करने वाला है ना, कुंभकार ने घट बनाया ऐसा हम कहेंगे, तो बनाया यानी वो कर्ता हो गया, कारक हो गया वो। तो पूर्व में तो अकारक था, पहले तो कुछ नहीं बना रहा था, अभी उसने घट बनाया तो अकारक से कारक हुआ ना, तो कुछ तो चेंज हुआ, तो ये भी नहीं बन सकता। इसलिए उसके जो कूटस्थता उसने मानी है उसका विघात होता है, उसका खंडन हो जाता है, अतएव कूटस्थ नित्यता का पक्ष बनता नहीं है। यदि कार्य सर्वथा सत है, सॉरी ऊपर, हाँ, यदि यत सर्वथा कार्य पुंवन्नोत्पत्मर उत्पत्तुमर्हति, यदि सत सर्वथा कार्य पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रक्लुप्तिश्च नित्यत्वैकांत बाधिनी। ये तीसरे का अर्थ पहले देखे, ये नीचे, यदि कार्य सर्वथा सत है तो वह पुरुष के समान उत्पन्न नहीं हो सकता, और परिणाम की कल्पना नित्यत्व रूप एकांत पक्ष की विघातक है। ये सर्वथा सत ही माना है तो उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, तो परिणाम ऐसा कह नहीं सकते, जो परिणाम परिणाम एक एक समय का ऐसा कह नहीं सकते। देखो विशेषार्थ, अभिप्राय यह है कि यदि कार्य को सर्वथा सत ही स्वीकार किया जाता है तो जैसे सांख्य मत में पुरुष की उत्पत्ति नहीं मानी गई है वैसे ही पुरुष के समान सर्वथा सत होने से प्रकृति से महान व अहंकार आदि की भी अनुत्पत्ति का अनिवार्य प्रसंग आता है जो उन्हें अभिष्ट नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? वे पुरुष को सर्वथा नित्य मानते हैं, उसकी उत्पत्ति नहीं मानते, बराबर, और कार्य को भी उसके समान मानते हैं कि कार्य की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं, यानी बस वो है। तो कहते हैं उसके समान अहंकार वगैरह की भी उत्पत्ति नहीं मान सकते भी, किसी जीव में अहंकार प्रकृति नित्यत्व एकांत बन पुरुष की कार्य को पुरुष के समान सर्वथा सत होने से ये प्रकृति से महान क्या कहना चाहते वो पता नहीं चल। हाँ जो उन्हें अभीष्ट नहीं है वो व शब्द डालने से ऐसे प्रकृति से मुझे नेचर से महान ऐसे अहंकार आदि की भी उत्पत्ति का अनुत्पत्ति का प्रसंग आता है ऐसा लेना, वो शब्द से अर्थ नहीं घटित हो रहा है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? नहीं ये तो ऊपर नहीं होगा ना, ये विशेषार्थ लिखा है उन्होंने, ट्रांसलेशन करने वालों ने लिखा है, अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रसंग को टालने के लिए यदि कहा जाए कि यथार्थ में न कोई कार्य उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, किंतु जिस प्रकार कछुआ अपने विद्यमान अंगों को कभी बाहर निकालता है और कभी भीतर छुपा लेता है, इसी प्रकार पूर्व में विद्यमान महान व अहंकारादि का प्रधान से आविर्भाव मात्र होता है। अच्छा, ये महान का है? महान अलग है, महान की उत्पत्ति होती है और अहंकारादि का प्रधान से आविर्भाव मात्र होता है। इस प्रकार आविर्भाव व तिरोभाव रूप परिणाम को छोड़कर कार्य कारण भाव वास्तव में है ही नहीं। सो इस कथन को असंगत बतलाते हुए उत्तर में यहाँ कहा गया है कि पूर्व स्वभाव यानी तिरोभूत अवस्था के नाश और उत्तर स्वभाव यानी आविर्भूत अवस्था के उत्पन्न होने का नाम ही तो परिणाम है। फिर भला ऐसे परिणाम की कल्पना करने पर नित्यत्व रूप एकांत पक्ष में कैसे बाधा न उत्पन्न होगी, उपस्थित होगी, अवश्य होगी। क्या कहते हैं उनका क्या कहना? वो है पहले तिरोभूत था, अभी आविर्भूत हुआ, तो ये उन्हीं के पक्ष को बाधा पहुंचाता है क्योंकि कुछ तो चेंज हुआ ना, समझ रहे? पहले तिरोभूत था, अभी आविर्भूत हुआ, तो इसी को वो परिणाम कहते हैं। तो उनकी जो पहले मान्यता है, उन्होंने जो दलील की थी, वो झूठ साबित हो जाती है। इसके अतिरिक्त सर्वथा नित्यत्व की प्रतिज्ञा में ये प्रतिज्ञा ने ये जो कोई स्टेटमेंट कहते हैं ना उसको प्रतिज्ञा कहते हैं, फिर उसके प्रूव करने के लिए हेतु दिए जाते हैं। अपने यहाँ न्याय की परिभाषाएं नहीं हुई ना, इसलिए जरा अटपटा लगता है अपने को। हाँ। अच्छा, चार नंबर का इसी का है पूरा। पहले हम गाथा पढ़ेंगे। पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रेत्य भाव फलम कुतः बंध मोक्षौ च तेषां न येषां त्वं नासि नायकः। इसके अतिरिक्त सर्वथा नित्यत्व की प्रतिज्ञा में यानी सर्वथा नित्य वस्तु है ऐसा प्रतिपादन करने वालों के मत में मन वचन व काय की शुभ प्रवृत्ति रूप पुण्य क्रिया तथा उनकी अशुभ प्रवृत्ति रूप पाप क्रिया भी नहीं बन सकती। सर्वथा कुटस्थी मानते हैं ना, तो ये अलग अलग क्रियाएं उसमें नहीं हो सकती। अतएव पुण्य व पाप का अभाव होने पर जन्मांतर प्राप्ति रूप प्रेत्यभाव ने वो अन्य जन्म की अलग अलग जन्मों की प्राप्ति होना उसको प्रेत्यभाव कहा, तथा सुख व दुख के अनुभवन रूप पुण्य एवं पाप का फल भी कहाँ से होगा, नहीं हो सकेगा। पुण्य पाप भाव भी घटित नहीं होगे तो अन्य जन्म की प्राप्ति होना वो भी घटित नहीं होगा, और फिर उसके फल सुख दुख वगैरह मिलना वो भी घटित नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, जिन एकांतवादियों के आप नेता नहीं है उनके मत में बंध व मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो भी पर्याय है बंध और मोक्ष, बस जो कुछ है वो है और वैसा ही रहेगा कायम।
नहीं,
हम अपने भगवान को कह रहे
हैं
कि जिन एकांतवादियों के आप नेता नहीं है, यानी आप कैसे हो अनेकांतवादी के नेता हो, अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप दर्शाया है और बाकी जो है वो एकांतवादी है और आप उनके नेता नहीं हो, ऐसे अन्य मतों में बंध और मोक्ष की भी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि उन्होंने वो पर्याय को ही नहीं माना है। अब सत्कार्य के किए न जा सकने से, उपादानों का ग्रहण होने से, सबसे सबकी उत्पत्ति का अभाव होने से, शक्त कारण द्वारा शक्य कार्य के ही किया जाने से तथा कारण भाव होने से असत ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा फिर ही लगाया हो, ऐसा कणाद वैशेषिक दर्शन के कर्ता और गौतम न्याय दर्शन के कर्ता आदि कितने ही ऋषि कहते हैं वह भी योग्य नहीं है। सर्वथा भी दूसरे वो सर्वथा असत का उत्पाद होता है मानने वाले है। पहले सर्वथा वो कार्य है ही मानने वाला था, सर्वथा सत है उसी का उत्पाद होता है कहता था। अब जो कणाद आदि जो अन्य ऋषि है उन्होंने सर्वथा असत की उत्पत्ति मानी, सर्वथा असत, सर्वथा लगावे ही लगाए ना, देखो क्या लिखा, असत ही कार्य उत्पन्न होता है ऐसा कणाद और गौतम आदि कितने ही ऋषि कहते हैं वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि कार्य जैसे विशेष यानी घटादि आकार स्वरूप से असत है वैसे ही लगाया, यदि उसे सामान्य स्वरूप से यानी मृत्तिका आदि स्वरूप से भी असत स्वीकार किया जाए तो ऐसा कार्य न तो बुद्धि का ही विषय हो सकता है और न वचन का भी, क्योंकि सर्वथा नया 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 हो रहा है, अभी किसको बताएं, कुछ कायम रहने ये गौतम आदि यानी वो बुद्ध गौतम बुद्ध सर्वथा क्षणिक माना ना उसने, बस सर्वथा असत 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 की उत्पत्ति होती है। जैनों जैसा अनेकांतवाद नहीं है कि द्रव्य कायम रह कर उसकी पर्याय बदलती है, तो वहाँ सत द्रव्य सत है तभी तो उसमें हम ये बदला ऐसे किसके आधार से कहेंगे, ये कहने वाला भी कायम रहे तो ही कह सकता है ना, कुछ कायम नहीं है, सब सर्वथा क्षणिक है और सर्वथा नया नया उत्पन्न होता है, कायम रहने वाली कोई चीज ही नहीं है, ऐसा मानने वाले सर्वथावादी है जो एकांतवादी उसकी बात है, यानी मिट्टी का स्वीकार नहीं है, सामान्य स्वरूप बस घट हुआ वो उसमें से वो खापर हुए उसमें से वो अलग अलग चीजें बनती जा रही, वहां ध्रुव रूप रहने वाली कोई चीज है इसका ही स्वीकार नहीं उनको, इसलिए वो ऐसा कार्य बुद्धि का विषय भी नहीं हो सकता और फिर उसको वचन से बता भी नहीं सकते। अतएव बुद्धि व वचन के अविषयभूत ऐसे कार्य के लिए स्थित कारण कलाप के व्यापार का विरोध आता है, फिर उसमें कारण भी क्या मानना, और यदि विरोध न माना जाए तो फिर जैसे मिट्टी के पिंड से घट उत्पन्न होता है वैसे ही उससे गधे का सिंह भी उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि खरविषण असत्व की अपेक्षा दोनों में कोई विशेषता नहीं है, कुछ नहीं था उसमें से उत्पन्न हुई ना तो कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरे यदि मृतपिंड में अविद्यमान घट उससे उत्पन्न होता है तो हम मृतपिंड के समान वालों से भी क्यों न उत्पन्न हो जावे, कि मृतपिंड में घट सर्वथा नहीं है ऐसा कहने वाले हैं। तो मृतपिंड से घट की उत्पत्ति तो सर्वथा नहीं थी, फिर भी हुई, तो फिर वालू का में से भी होनी चाहिए, अवश्य उत्पन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि असत्व की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं, उसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है। तो ये होना होने का प्रसंग आ जाएगा। अर्थात जैसे वह मृतपिंड में अविद्यमान है वैसे वह वालू में भी अविद्यमान है। फिर क्या कारण है कि वह मृतपिंड से तो उत्पन्न होता है और वालू से उत्पन्न नहीं होता? अतएव मानना चाहिए कि घट मृतपिंड में व्यक्ति रूप से अविद्यमान होकर भी शक्ति रूप से विद्यमान है। पहले वाला जो कपिल वाला क्या कहता था, वो बस घट रूप से विद्यमान है, सर्वथा विद्यमान सत कहता था। अब ये दूसरा क्या है, सर्वथा वो असत ही है कहता है, परंतु वहाँ शक्ति रूप से विद्यमान है, व्यक्ति रूप से नहीं है, ये अनेकांत है। किंतु वालू में वह शक्ति रूप से भी विद्यमान नहीं, अतएव वह जैसे मृतपिंड से उत्पन्न होता है वैसे वालू से उत्पन्न नहीं हो सकता। और भी कार्य को सर्वथा असत मानने पर, ये सर्वथा असत का निषेध कर रहे हैं, ना सर्वथा सत है ना सर्वथा असत है। कथनचित सत असत वो तो फिर जैनी उसका यथा योग्य निर्णय करेंगे और कथन भी करेंगे। कार्य को सर्वथा असत मानने पर यही इसका कारण है, अन्य नहीं है, यह भी घटित नहीं होता। क्यों, कारण ही कैसा कहेंगे, वो सर्वथा असत है ना, उसमें कुछ उसके कोई अंश ही नहीं है। क्योंकि इसका कोई नियामक नहीं है, तो हम नींबू का भी बोकर वो आम उगाना चाहेंगे तो बनना चाहिए, परंतु वहाँ शक्ति रूप से वहाँ वो नीम का, ये जो नींबू है तो उसमें से नींबू का ही पेड़ उगेगा, आम की गुठली बोने से आम का उगेगा, उसमें वो शक्ति रूप है, सर्वथा असत नहीं कहेंगे हम उसको, इसका कोई नियामक नहीं। और यदि कोई नियामक है भी तो वह कारण में कार्य के अस्तित्व को छोड़कर दूसरा भला कौन सा नियामक हो सकता है? और कहेंगे वहाँ कोई तो नियामक होना चाहिए, तो उस कारण में कुछ तो ऐसी शक्ति विद्यमान है, उस कार्य रूप होने की शक्ति वहाँ है, उसी को हम नियामक कह सकते हैं। यदि कहो कि स्वभाव नियामक है तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्व में कार्य के स्वभाव का अभाव है, क्योंकि उसने सर्वथा अभाव माना है तो कार्य का भी स्वभाव उसमें नहीं पाया जाता। और एक असत कुछ दूसरे असत का नियामक हो नहीं सकता, क्योंकि वैसा होने पर अति प्रसंग आता है। ये कथनचित सत असत का स्वीकार नहीं है उसको, और अपेक्षाकृत है वो, उसकी बात नहीं समझते और अपने मत से ये सारी कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं और विस्तार से उसका तर्क विवेचन सब कुछ करेंगे। पढ़ने वाले को लगा हाँ ये बराबर है, बराबर बराबर ऐसा लगता है ना। हाँ, इसके अतिरिक्त मृतपिंड में जैसे घट उत्पन्न होता है वैसे ही उससे तीनों लोग भी उत्पन्न हो जाने चाहिए, क्योंकि असत्व की अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है, ये पूरे लोक में जो कुछ है वो सब उसमें से बनना चाहिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि उसमें है ही नहीं ना, है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति होती है तो कुछ भी बनेगा उसमें से, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परिमित कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। परिमित कहो या परिमित, यानी विशिष्ट निश्चित कार्य ही उसमें से उत्पन्न होते हैं, सब नहीं। परिमीय, परिमित चाहिए शब्द, वो परिमित नहीं, परिमित यानी लिमिटेड। इसके सिवाय समर्थ भी कुमार मृतपिंड में जैसे घट को उत्पन्न करता है वैसे पट को क्यों नहीं उत्पन्न करता? क्योंकि किसी भी विशेषता का यहाँ अभाव है, और यदि कोई विशेषता है तो अपने अस्तित्व को छोड़कर और दूसरी क्या हो सकती है? अभी इसकी चर्चा हम करेंगे, कहाँ भी है जो गाथा कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते
नमो सुदानम नमो वायरानम नमो वज्जानम नमो लोहित संवत्सावनम।